ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयं देरेत्। नष्टप्रायशुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तेर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 10 श्लोक 3। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभि तत्त्वदर्शिभि श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभि तत्त्वदर्शिभि श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभि तत्त्वदर्शिभि श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभि तत्त्वदर्शिभि श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभि तत्त्वदर्शिभि श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। पढ़िए। माता जी माता जी ठीक है। शब्दार्थ तस्य भगवान रामचंद्र तथा उनके भाइयों का। अनुचरितम दिव्य कार्यकलाप। राजन, हे राजा महाराज परीक्षित। ऋषिभे, ऋषियों द्वारा। तत्वदर्शिभे, परम सत्य को जानने वाले। श्रोतम, सुना गया। ही, निस्संदेह। वर्णितम, सुंदर ढंग से वर्णित। भूरी, अनेक। त्वया, तुम्हारे द्वारा। सीता पते, सीता के पति भगवान रामचंद्र के। मोहो, बारंबार। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। राजा परीक्षित भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन, नहीं सॉरी, हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि आप सीता माता के पति रामचंद्र के विषय में बारम्बार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। तात्पर्य, आधुनिक समाज जो डॉक्टरेट डिग्रीधारी होने का स्वांग करते हैं, अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं, उन्होंने असिद्ध करने का कुप्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान न होकर सामान्य व्यक्ति हैं। किंतु जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो परम सत्य के जानने वाले तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र उनके कार्यकलापों के वर्णनों को ही स्वीकार करेंगे। श्रीमद भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भगवान उपदेश देते हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, विनीत होकर उसे प्रश्न करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार किया है। तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। अतएव कहने को तो अनेक तथा कथित रामायणे हैं, किंतु उनमें से कई तो यथार्थ रूप में प्रामाणिक नहीं है। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु रामचंद्र जी की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया, आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले से सुन रखा है, अतएव स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायणें थीं और अब भी अनेक हैं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को चुनना चाहिए। ज्ञानी न तत्वदर्शी न, ऐसे तथा कथित पंडितों की किताबों को नहीं जो मात्र डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है, ऋषि भी तत्वदर्शी न। यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक बृहद ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया है। तो भगवान श्री रामचंद्र, जैसे भगवान राम आज से लाखों वर्ष पहले अयोध्या में आए और अपनी लीलाओं को प्रस्तुत किए, भगवान जब भी आते हैं तो उनके साथ में उनके अनेक परिकर भी आते हैं लीला में शोभा बढ़ाने के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण आए तो अनेक उनके परिकर आए, तो भगवान राम के परिकर हैं ऋषि तथा वन्य जीव, जंगल के जीव, जैसे बानर, रिच्छ इत्यादि। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबके साथ सौहार्द और मित्रता स्थापित किया, यहाँ तक कि ऋषियों से ही नहीं, ऋषियतर पुष्प पशुतर प्राणियों से भी, मनुष्यतर पशुओं से भी मित्रता स्थापित किए, सौख्य स्थापित किए। ये भगवान राम की लीलाएं अति लोक रमणीय है। वो बानर राज सुग्रीव जी से मित्रता किए और उनसे सहायता लिए, जबकि सर्वसमर्थ हैं। वो समुद्र पर बिना पुल बनाए पार हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा का निर्वाह करने के लिए समुद्र पर पुल बनाए। वो सर्वज्ञ हैं, फिर भी गुरु के निर्देशन में ज्ञान का अनुशीलन किए। तो भगवान राम की जो लीलाएं हैं बहुत मर्यादा से ओतप्रोत है, इसलिए भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ऐसे भगवान श्री राम की लीलाएं जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विस्तृत रूप में वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी सूत्र रूप में नवम स्कंद में कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय कम था। परीक्षित महाराज के पास समय कम था, अगर पूरा रामायण कहते तो कई महीनों लग जाते, इसलिए सूत्र रूप में रामलीला का उन्होंने वर्णन किया है समय अभाव के चलते। बृहद रूप से ऐसे तो अनेक रामायण है, रामायण सतकोटि अपारा, बहुत रामायण है, लेकिन भारतवर्ष में दो रामायण प्रसिद्ध हैं, वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण। ऐसे भविष्य पुराण में कहा गया है कि वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में आए थे, वाल्मीकि दास ही तुलसीदास के रूप में आए लोक भाषा में रामचरितमानस को लिखने के लिए। तो भविष्य पुराण में श्लोक मिलता है कि वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथाम एताम भाषा बद्धम करिष्यति। भविष्य पुराण में भविष्य में क्या क्या होगा, ये सब बातों को उल्लेख किया गया है। तो तुलसीदास के आने से बहुत पहले भविष्य पुराण में वेद व्यास सब लिख दिए हैं कि वाल्मीकि जो आदि कवि हैं वही तुलसीदास के रूप में आएंगे और लोक भाषा में रामलीलाओं का वर्णन करेंगे। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, शिव जी कह रहे हैं देवी पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, जो रामलीला है इसका विस्तार करने के लिए सामान्य लोक भाषा में वाल्मीकि तुलसीदास के रूप में आएंगे। कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथा मेतम भाषा बद्धम करिष्यति। भविष्य पुराण का यह श्लोक है। प्रतिसर्ग पर्व 4:20। ऐसे बहुत सारे लोग तुलसीदास के विषय में बोलते हैं कि प्रमाणिक नहीं, लेकिन भविष्य पुराण एक प्रमाण है कि जो रामचरितमानस है वो भी प्रमाणित। प्रभुपाद जी ने बहुत ग्लोरिफिकेशन किया है तुलसीदास के रामायण के विषय में। कुछ एक चौपाइयों पर प्रभुपाद जी ने कमेंट किया है, बाकी ज्यादातर ग्लोरिफिकेशन किए हैं। तो दो भगवान की लीलाओं में दो जो मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण बहुत प्रसिद्ध है। और आजकल तो जो हिंदी भाषा क्षेत्र में रामचरितमानस ही ज्यादा लोकप्रिय है। एक प्रश्न आता है हिंदी साहित्य में कि रामचरितमानस क्यों लोकप्रिय है, क्योंकि सामान्य भाषा में कोई भी समझ जाता है। इलिटरेट लोग भी, जो अनपढ़ लोग हैं, वो भी रामचरितमानस के चौपाइयों को बोल लेते हैं, उसका व्याख्या कर लेते हैं, इसलिए ज्यादा लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त किया है। तो भगवान राम की अनेक लीलाएं हैं, उन लीलाओं को सूत्र रूप में मैं भी वर्णन करूंगा। से आदव राम तपो बना दिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि रामायणम। सूत्र रूप में इतना ही रामायण है। आदव राम तप बना दिगमनम, भगवान प्रारंभ में तप करने के लिए वन में गए। भगवान भी आते हैं तो तप करके सिखाते हैं, जैसे गीता में भगवान कहते यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान तप करना ही चाहिए। तो भगवान को भी आकर यहाँ तप करना पड़ता है, वैराग्य दिखाना पड़ता है लोक शिक्षा के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए। ये बद्रिकाश्रम में नारायण ऋषि रूप में भगवान तप करते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान भोग स्वीकार करते हैं और रामेश्वरम में रंगनाथ में शयन करते हैं, सोते हैं, और रामेश्वरम में स्नान करते हैं और द्वारका में द्वारकाधीश बनकर शासन करते हैं और रामचंद्र के रूप में भगवान वन में 14 वर्ष तपस्या करते हैं। भूमि शयन बलकल बसना, भूमि पर शयन करते हैं, बलकल धारण करते हैं, असन कंद कंद मूल फल ये सब स्वीकार करते हैं, नगर और गांव से दूर रहते हैं। तो भगवान क्यों वन में गए, भगवान का उद्देश्य था जंगल में जाना। बहुत सारे लोग बड़े बड़े विद्वानों ने किया कि कैकेयी का कोई दोष नहीं था, लोग बोलते हैं कैकेयी ने राम को वन में भेज दिया, राज्याभिषेक होने वाला था, हाय रे कैकेयी ऐसे शुभ वक्त पे राम को वन में जाना गजब हो गया, लोग गाना गाते हैं। कैकेयी का कोई दोष नहीं था, वास्तव में कैकेयी तो राम को बहुत चाहती थी, भरत से भी अधिक राम के प्रति उसका स्नेह था, वात्सल्य था। लेकिन भगवान जब आते हैं तो खलनिग्रहाय सज्जन रक्षणाय परित्रणाय साधुनाम विनाशाय से दुष्कृताम, तो भगवान आए थे असुरों का वध करने के लिए। अगर राजा बन जाते तो कैसे जंगल में जाते, और जितने भी राक्षस थे सब जंगल का आश्रय लिए थे। आज भी ज्यादातर जो टेररिस्ट हैं जंगल में रहते हैं, जंगल में मंगल करते हैं, जंगल में छुपने के लिए सुविधा है। तो उस समय भी बड़े बड़े जो राक्षस थे वो जंगल में भूमिगत थे, तो भगवान को देवता लोग, देवताओं ने सोचा कि अगर राम राजा हो जाएंगे, राज की तैयारी, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, तो फिर उद्देश्य पूरा नहीं होगा, फिर असुर नहीं मारे जाएंगे। तो देवताओं ने सरस्वती से संपर्क किया, कहा कि आप इसमें सहयोग दीजिए। तो सरस्वती ने कैकेयी की जो चेरी थी, जो दासी थी, उसके ऊपर सवार हो गई, कैकेयी की बुद्धि को पलट दी और उसको ऐसी बुद्धि दी जिसे कैकेयी का ब्रेन मास कर सके। सरस्वती साक्षात मंथरा के ऊपर सवार हो गई और सरस्वती जी बुद्धि दे रही थी। तो सरस्वती जब सवार हो गई तो मंथरा के मन में अनेक भाव आने लगे, उन भावों को कैकेयी से कहने लगी कि महारानी कैकेयी जी आपको पता नहीं है, राम राजा बन जाएंगे तो भरत जेल में होंगे और राजा बड़े चतुराई से राज्याभिषेक कर रहे हैं, आपके पुत्र तो मायके में आपके मायके हैं और आपको केवल भोजन और निद प्रिय है, राजा के विषय में वास्तविक आप नहीं जानती हैं। जब राजा राम हो जाएंगे तो आप पानी भरेंगी, कैकेयी कौशल्या की दासी बन जाएंगी। तो उन्होंने कद्रुबिनता का इतिहास सुनाया, अनेक सौतिया कथा सुनाया। मंथरा ने कहा कि अभी भी समय है, मैं तो आपका अनहित देख नहीं पाती हूँ। तो जब यह बात कही तो कैकेयी ने कहा कि तुम घर फोड़ी हो, इस तरह की बात करोगी तुम्हारी जीभ उखाड़ लूंगी, घर फोड़ने की का प्रयास मत करो, राम राजा होंगे तो सब खुशी होंगे, राम राजा होंगे तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो, ऐसी बात मत करना दोबारा तो तुम्हारी जीभ उखाड़ लूंगी। तो मंथरा ने कहा कि रानी जी ठीक है, अब मैं ठाकुर सुहाती कहूंगी, जो आप कहेंगी उसमें हाँ में हाँ मिलाऊंगी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं जिसका हित सोचती हूँ वही मुझे अपना शत्रु समझ लेता है। तो ठीक है, जाने दीजिए, आपको समय आने पर पता चलेगा। कुछ ऐसे मर्म वचन मंथरा ने ऐसा कहा, क्योंकि सरस्वती सवार रहे, ऐसे मंथरा बहुत कपट कुचाली थी, काने काले कुबड़े कपट कुचाली जान। मंथरा भी कुबड़ थी और बहुत कुचाली बुद्धि की थी, बात को बतकड़ करने में बहुत तेज थी, वो इधर का उधर करने बहुत दक्ष थी। इसलिए सरस्वती देवताओं ने उसी को चुना कि इसमें दक्षता है। एक तो भाल और दूजे मिलल कुदाल, अगर भाल हो उसको कुदाल मिल जाए तो और कोड़ने में उसको सहायता होगा। भाल का पंजा बहुत मजबूत होता है और भाल अपने पंजे से बहुत जमीन में गड्ढा खोदता है। एक तो करैला दूजे नीम पर सवार। तो मंथरा के इसे बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, मंथरा के इस तरह से बार बार कहने से कई के मन में भेद हो गया राजा दशरथ और कौशल्या के प्रति। तो उसने कोप भवन में, राजाओं के पास कोप भवन होता है, कोई रानी को कोई समस्या है तो कोप भवन में जाती थी। तो कल प्रातः काल राम को राज्याभिषेक होने वाला था और कई महारानी कोप भवन में चली गई। खबर राजा दशरथ को मिली तो राजा दशरथ जी आए और कहे कि रानी आपको क्या ये है, कल राज्याभिषेक है। नहीं, कई बिल्कुल जैसे कोई सर्पिणी फुफकार मारती है वैसे फुफकार मार रही थी, राजा दशरथ के प्रति वैसे ही देख रही थी जैसे जैसे कोई व्याघ्र जो है शिकार अपने लक्ष्य को देखता है। कैकेयी को राजा बार बार समझा रहे थे कि आपको क्या चाहिए, आप जिसे कहो उसे राजा बना सकता हूँ, जिसे कहो उसका सिर धड़ से निकाल सकता हूँ, आप क्या चाहती हो मांग लो। कैकेयी ने कहा कि आप बार बार मांगने के लिए कहते नहीं, देते नहीं कुछ, आप राम का शपथ खाइए कि जो मैं मांगूंगी वो देंगे। दशरथ कहे कि राम का शपथ क्या, आप जो मांगना है मांग लो। नहीं, कैकेयी जो है उसका तो मंथरा ने सपाठ पढ़ा दिया था कि राजा के बात में आप मत आना, राम का शपथ पहले दिला लेना कि राम का शपथ खाइए कि जो मैं मांगूंगी वो देंगे। तो राम का शपथ दिलाकर तब उसने कहा, कैकेयी को ये दो वचन मंथरा ने ही याद दिलाया था कि देवासुर संग्राम में तुम्हें दो वचन राजा ने दिया था, वो मांग लो। एक वचन में राम को वन का साम्राज्य मांग लो और दूसरे में राम भरत के लिए अयोध्या का साम्राज्य मांग लो। मंथरा ने कहा कि तुम्हारे पास दो वचन बाण है, इसे तुम स्वीकार कर सकती हो। एक से राम को वन में भेज दो 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष क्यों, कैकेयी ने 14 वर्ष ही क्यों मांगा, 14 वर्ष जो भी अपने राज्य से बाहर आता है तो उसका राज्य के ऊपर अधिकार समाप्त हो जाता है। जो कोई भी 14 वर्ष अपने संपत्ति से दूर रहता है या किसी दूसरे को दे देता है, घर है या फ्लैट भी दे देता है, तो फिर उसका वो हो जाता है, या जमीन भी, अब तो 3 वर्ष अगर कोई दूसरा जमीन उसका सेवा करता है तो उसका हो जाता है। तो 14 वर्ष कैकेयी ने को मंथरा ने कहा था कि 14 वर्ष राम को वन मांगना, कि 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहेंगे तो उनका ऐसे ही राज से अधिकार समाप्त तो हो जाएगा। 14 वर्ष राम वनवासी। तो कैकेयी ने 2 वर मांगा था देवासुर संग्राम में। महाराज दशरथ जी देवताओं के तरफ से स्वर्ग में लड़ने गए थे, असुरों के तरफ से, बड़े वीर थे। एक दिन संग्राम में उनके रथ का जो धुरी है टूट गया, तो महारानी कैकेयी को एक ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त था कि समय आने पर, जरूरत पड़ने पर तुम्हारा हाथ जो है लौह दंड की तरह हो जाएगा। कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी बाल्यकाल में ही एक ऋषि से बड़ा सुंदर आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक बार ऋषि का दंड कमंडल बाल्यावस्था में कैकेयी ने चुरा कर छुपा दिया था। बच्चे तो कौतुकी होते हैं उनको क्या मालूम है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, उनको ज्ञात नहीं है। और बच्चों के द्वारा अपराध भी कोई अपराध नहीं माना जाता है। तो कैकेयी बाल्यावस्था में एक ऋषि ध्यान में थे, जब ध्यान में बैठे थे तो उनका दंड और कमंडल लेकर चली गई और छुपा दी। अब जब ध्यान से उठे तो न दंड है न कमंडल है उनको बहुत तेज हुआ, बहुत क्रोध कर रहे थे, उसके प्रति बहुत क्रोध कर रहे थे, कौन ऐसा किया, कौन मजाक किया। तो बाद में वो बालिका आकर के ऋषि के चरणों में नतमस्तक होकर के चरण स्पर्श करके उनका दंड कमंडल दे दी। तो ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, उनका चरण स्पर्श की तो ऋषि ने कहा कि बेटी जाओ, समय जरूरत पड़ने पर तुम्हारा यही हाथ जो है लौह दंड के समान हो जाएगा। ये कथा भी विस्तार से है। इसीलिए देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ का जब रथ का धुरी टूट गया, लोहे का किल होता है ना, तो उन्हें अपना हाथ ही लगा दिया था। तो जरूरत पड़ने पर लोहे का काम किया, हस्त जो है लौह दंड हो गया। तो ये वीरता देख करके कि महारानी कैकेयी कितनी वीरंगना है, महान छत्राणी है, बहुत वीर थी। पहले की जो छत्राणियां थी जो, वो भी बहुत वीर थी। जैसे आप इतिहास में सुनेंगे कर्णावती महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत बड़ा वीर थी। हम लोगों ने कहानी पढ़ा था कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, आ खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी बहुत वीर थी। तो पहले के जो राजघरानों की जो रानियां होती थी छत्राणी, वो भी बहुत वीर होते थे। समय आने पर वो भी युद्ध में कूद जाते थे। तो कैकेयी बहुत वीर थी, इसे राजा दशरथ उनको दो वरदान दिए थे। वही मंथरा ने याद दिलाया कि दो वरदान है आपके पास। तो कैकेयी ने वही दो वचन से कहा कि एक वचन में राम को 14 वर्ष वनवास दीजिए, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी, तपस्वी वेश में जाएंगे, एकदम उदासीन हो करके, कोई अपने साथ सामान नहीं ले जाएंगे, अब वन में ही केवल रहेंगे, कहीं बाजार में गांव में नहीं जाएंगे। जैसे भगवान राम को जब कैकेयी के द्वारा यह प्रस्ताव मिला तो वन जाने के लिए तैयार हो गए। दशरथ जी से आज्ञा लेकर के, दशरथ जी नहीं कहे कि वन जाइए, तो बिल्कुल मूर्छित थे। राम बहुत प्रिय थे दशरथ के, दशरथ जी कभी मुख से नहीं कहे। जब राम जाने लगे तो सुमंती जी से कहे कि सुमंत जी राम को जंगल में ले जाकर वापस ले आना, इनकी इच्छा ही है तो जंगल में थोड़ा घुमा करके वापस ले आना। सुमंत जी के साथ भगवान राम सीता भी बन जाने के लिए तैयारी करने लगी। उनको भी जब समाचार लगी, समाचार तें समय सुनी सिय उठी अकुलाय, जाई सास पद कमल जुगा बंद बैठ सिरनाय। सीता जी को जब खबर लगी कि राम बन जा रहे हैं, दशरथ जी ने उनको राजा बनाने का तैयारी किया था, लेकिन बन जा रहे हैं, किसी को राजा बनाने का प्रस्ताव देकर वन भेजा जाए तो सारे नगर निवासी बहुत दुखी हो गए। ये क्या हो गया, क्या पागल हो गए क्या दशरथ जी, ये क्या कर दिए। माई कसाई भैली बाबू भैले बाउर। जब भगवान राम वन में जाने लगे तो वहां के जो वन के रहने वाले कोल भील कहने लगे कि आपके जैसे सुंदर सुकुमार को कौन ऐसे माता पिता हैं जो वन में पठाए हैं। वो माई और माता और पिता वो बाउर हो गए हैं क्या, पागल हो गए हैं। माई कसाई, माई क्या कसाई हो गई है, अब बाबू भैले बाउर। काहे तो हैं देई देहले खोइंछा में चाउर। जब किसी का विदाई होता है लड़की का तो आंचल में चावल सुपारी ये सब कुछ दिया जाता है। कई तो हैं देई देहले खोइंछा में चाउर, हे बाबू रुक जा दो चार दिन आउर। दो चार दिन यहाँ रुक जाए वन में कैसे जाएंगे, इतने कोमल हैं सुकुमार हैं और साथ में एक सुंदर नारी भी है, अब वन के योग्य नहीं है, आप तो राजमहल में रहने वाले हैं। दशरथ जी ने कहा नहीं, लेकिन राम अभिप्राय कैकेयी का तो मत था ही, तो वन जाने लगे। तो सीता जी जबकि वन में जाने के योग्य नहीं थे, उनके लिए वनवास नहीं दिया गया था। महाराज ने कथा में कहा था कि सीता किस तरह से कह रही है कि तन प्राण की केवल प्राण विधिकर तब कछु जाई न जाना। सीता जी ने कौशल्या से कहा आशीर्वाद दीजिए, मैं वन जाना चाहती हूँ। और कौशल्या जी सीता जी की सुकुमार अवस्था देख करके बहुत चिंतित हैं, ये वन में कैसे जा सकती है। दीप बाती नहीं तारण कहे वो, पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सियन दिन पगयवनी कठोरा। सीता जी का बहुत स्नेह से लालन पालन किया था कौशल्या जी ने। जब जनकपुर से आई थी तो बहुत सुकुमार थे तो पलंग पर रहती थी, तो हिंडोरे में रहती थी। पलंग पीठ तजगोद हिंडोरा आ सियन दिन पग अवनि कठोरा। सीता जी ने कभी जमीन पर पाँव नहीं रखा था। सोईसीय चलन चहती बनसा था, आय सुखा हो रघुनाथ। हे रघुनाथ, वही सीता जो इतनी सुकुमारी है बन जाना चाहती है, आपकी क्या आ गया है। मैंने तो सीता का ऐसे स्नेह से पालन किया जैसे नेत्र की रक्षा पलकें करती हैं, नयन पुतर कर प्रीत बढ़ाई, राखू राम जानकी लाई। हे राम, जानकी में को अयोध्या में ही रहने दो, यह इसकी मैंने ऐसी ही रक्षा जैसे नेत्र की पलकें, कुछ भी होता है तो पलकें बंद कर लेती हैं, आंखों ढक लेती हैं प्रहार से। नयन पुतर कर प्रीत बढ़ाई, ये प्रसंग भी बहुत लंबा है, आप लोग सुन चुके हैं। कौशल्या ने कहा कि ये जंगल में कैसे रह सकती, मानसरोवर में विहार करने वाली हंसिनी खारे जल में कैसे रह सकती है, या चंद्रमा को देखने वाली चकोरी सूर्य के साथ कैसे नेत्र जोड़ सकती है। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन से कहीं की मिजोरी। क्या सीता वन में जाने के योग्य है, ये तो महाराज कह रहे थे कि बंदर का चित्र देखकर डर जाती है, और जंगल में तो बड़े बड़े भयंकर शेर बाघ हैं, करके हर निश्चर चरही दुष्ट जंतु बनभूर। जंगल में तो करी माने हाथी हैं, शेर हैं, बाघ हैं और मनुष्यों को खाने वाले निशाचर भी हैं, तो ऐसे जंगल में क्या सीता रह सकती है, अब विचार कीजिए। मां ने कहा सीता एक नहीं सुनी, कहीं नहीं मैं वन में ही जाऊंगी, अगर यहां रहूंगी तो मेरा प्राण जो है राम के साथ रहेगा। कीर्तन प्राण, या तो हमारा शरीर यहां रहेगा और प्राण जो है राम के साथ रहेगा, या शरीर और प्राण दोनों राम के साथ रहेगा। कीर्तन प्राण की केवल प्राण विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना। विधाता का क्या कर्तव्य है कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरा शरीर यहां केवल रहेगा कि शरीर प्राण दोनों राम के साथ रहेगा। तो जब राम के साथ सीता लक्ष्मण जी भी आ गए, ये भी प्रसंग आपने सुना। लक्ष्मण जी कहे कि भैया मैं भी आपके साथ बन जाना चाहता हूँ। भगवान राम कहे कि जाओ अपने माँ से आदेश ले लो सुमित्रा से। लक्ष्मण जी गए सुमित्रा के पास कि मुझे आदेश दीजिए। सुमित्रा ने कहा कि तुम्हें आदेश लेने की जरूरत, तुम्हें तो वहीं से चले जाना चाहिए था। मेरा सौभाग्य होगा कि तुम राम के सेवा में रहोगे। राम पदार बिंद अनुरागी, भगवान राम के चरणों का अनुरागी बन करके, वैसे ही जैसे भौंरा जो है कमल का अनुरागी होता है, वैसे श्री राम के चरण कमल का भौंरा बनकर उनके चरणों के मंद रस मकरंद का पान करो, का सेवा करो, तभी मेरा पुत्र जनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब मैं पुत्रवती कहलाने के अधिकारी हो जाऊंगी। पुत्रवती जुवती जग सोई, हरिहर भगत जास सतोई। सुमित्रा जी ने बहुत सुंदर बात कहा कि पुत्रवती स्त्रियां वही हैं जिसका संतान कृष्ण भावना भावित हो। तो भगवान के साथ राम लक्ष्मण जानकी, अजय बोलो हनुमान की बाद में हनुमान जी होंगे। तो प्रथम सुमंत जी रथ लेकर तमसा नदी के तट पर विश्राम किए। सारे अयोध्या वासी थे, विरह में रो रहे थे कि राम वन कैसे जाएंगे। सब नगर के नर नारी सब राम के पीछे पीछे चल रहे थे, रथ को रोक रहे थे। लेकिन रात्रि तमसा नदी के तट पर सब लोग सोए, जब सबको भगवान ने जोग माया में सुला दिया और सुमंत जी कहे रथ खोलिए, ऐसे धीरे से रथ बढ़ाइए कोई जाने ना। जैसे भगवान कृष्ण जब कंस के कारागार में आए तो सबको, सारे मथुरा वासियों को जोग माया में सुला दिए, सब सो गए तो गोकुल में चले गए। इधर अयोध्या वासियों को भगवान ने सुला दिया और चले गए, सब सोए रहे। जब प्रात काल में सब देखे तो राम है नहीं, सीता नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, सुमंत जी नहीं है, सब विकल हो गए। जैसे मणि के बिना सर्प विकल होता है, वैसे सब विकल हो गए। तो करें क्या, सब नींद में आ गए। अगर जगे रहते तो जो सोवत है वो खोवत है, सो गए तो भगवान चले गए। वास्तव में सोना ही नहीं चाहिए था, रात्रि संवाद करते रहना चाहिए था, लेकिन सब सो गए तो भगवान सबको सोए में चले गए। तमसा नदी पार करके भगवान श्रृंगवेरपुर जाते हैं ना महाराज जी, श्रृंगवेरपुर जाते हैं ना, तो वहां निषाद राज थे, निषादों के राजा थे, उनसे मित्रता हुई। निषाद राज बहुत जंगल में सेवा की भगवान राम के लिए, कंद मूल फल लाते थे। प्रथम मित्रता निषाद राज से किए। निषाद राज देखे कि ये राजकुमार हैं, वन में आए हैं, तो उनके लिए आसन बनाते थे, पण कुटी बनाए और कंद मूल फल लाते थे। निषाद राज कहे कि यहीं आप 14 वर्ष की अवधि व्यतीत कीजिए। भगवान राम कहे कि नहीं, हमें जति की तरह हम जटाजूट बनाए हैं, तो हमें एक जगह नहीं रहना, ज्यादा भ्रमण करना है। कुछ समय रहे, जाने लगे तो निषाद राज ने कहा कि आपने मुझे मित्र बनाया है, वास्तव में मैं बहुत निकृष्ट प्राणी हूँ, मुझे लोग देख करके ही दूर हो जाते हैं, लेकिन आपने मुझे मित्रता का अद्भुत सौहार्द दिया है, जब से आपने मुझे मित्र बनाया है तब से सारे लोग मुझे अपना लिए हैं, जब आप अपनाए तो सारे लोग मुझे अपना लिए हैं। राम जिसको अपना मित्र बना ले तो उसके लिए देवता लोग भी उसका चरण चूमते हैं, वो सबके लिए वंदनीय हो जाता है। निषाद राज कहे कि मेरा क्या सौभाग्य है, आपने मुझे मूल्यवान बना दिया, मैं तो बिल्कुल निर्गुण था, कोई गुण मुझ में नहीं था। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं कि गोपीनाथ मम निवेदन सुन, विषयी दुर्जन सदा कामे रत, किछु नाई मोर गुण। ऐसे ना, तो निषाद राग कहे कि मेरे अंदर तो कोई गुण था ही नहीं, मैं तो विषयी था, विषयी दुर्जन सदा कामे रत, किछु नाही मोर गुण, गोपीनाथ मम निवेदन सुन। वैसे कह कि हे भगवान, हे श्री राम जी, आपने उस पर अहतुकी कृपा किया है कि मुझे आपने मूल्यवान बना दिया। जब हूँ आप राम अपनायो मोहिते भुवन भूषण भयो तब ही थे, मैं भुवन का भूषण बन गया ससुभा के। फिर वहां से भगवान राम कहे कि अब मैं सुमंत जी को कहे कि आप जाइए, भगवान राम कहे कि पिताजी बहुत दुखी होंगे, माताएं दुखी होंगी, उनका विरह कम कीजिए, उनको इतिहास पुराण सुना करके उनके शोक को मोह को कम कीजिए। सुमंत जी यद्यपि नहीं जाना चाहते थे, भगवान राम कहे कि आप जाइए और पिताजी को कहिए कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर राम अवश्य आ जाएंगे, आप दुख न करें। सुमंत जी नहीं चाहते हुए भी रथ लेकर जले जंगल का कुछ मार्ग उनको मार्गदर्शन कराने के लिए निषाद राज भी जा रहे थे, घोड़े भी रुक जाते थे और मुड़ कर राम की ओर देख रहे थे, जो राम के घोड़े थे वो भी विरह में रो रहे थे। सुमंत जी भी रो रहे थे कि अब मैं क्या कहूंगा, भोजपुरी में लोग कहते हैं कि राजवा पूछी तो हम का कहब, मारे राजा दशरथ पूछेंगे तो क्या कहूंगा, क्या उत्तर दूंगा। दशरथ जी कहे थे कि सुमंत जी राम लक्ष्मण जानकी को जंगल से वापस ले आना, तो मैं तो खाली हाथ जा रहा हूं, तो राजा दशरथ पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा, यही मन में बात लगी थी। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा होता है तो उनके विचारों का, उनके हृदय सागर में दो बातों का ज्वार भाटा हो रहा था कि राजा राम के विरह में होंगे और मैं जाऊंगा तो देख करके पूछेंगे कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, जानकी कहाँ है, तो मैं क्या उनको उत्तर दूंगा, उनके विरह को कैसे कम करूंगा, बल्कि मुझे देखकर उनका विरह का जो ज्वार है और बढ़ जाएगा। और विरह के सागर में उनकी शरीर की नौका डूब जाएगी, उनका अंत हो जाएगी, वो सोच रहे थे भविष्य में क्या होगा, भविष्य के घटनाओं को भाप गए थे सुमंत जी। सुमंत जिसकी बहुत सुंदर मति हो उसको सुमंत कहते हैं, या जो सुंदर मंत्रणा देता है वो सुमंत है। दशरथ जी के मंत्री थे सुमंत जी, बहुत सुंदर मंत्रणा देते थे, तो कह रहे थे कि क्या मैं कहूं कि जिससे उनका विरह कम हो, उनका दुख कम हो। इधर राम आगे बढ़े तो केवट के पास जाते हैं, केवट से कहते हैं कि मुझे गंगा पार उतार दो। केवट कहा कि मैंने सुना है कि आपके पांव से के धूली से पत्थर भिनारी हो गई, आपको अगर गंगा पार जाना है तो आप पांव धुला कर जाइए, आपका कोई दोष नहीं है लेकिन आपके चरणों में जो धूली है उसका बहुत बड़ा दोष है। केवट भगवान के चरणों को धोना चाहता था, तो बड़े जुक्ति से कहा कि प्रभु रावर दोष न पाए न को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, बरुमारिये मोहि बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाई हो, जो आपको नाव पर ऐसे में नहीं चढ़ाऊंगा, आपके पांव में जो धूली है उसका बड़ा प्रभाव है, हमारी नाव भी काठ की है और जल खा रही है, ते अगर हमारी नाव नारी हो जाएगी तो घर की नारी को क्या समझाऊंगा, घरनी घर क्यों समझाई हो, जो हमारा सारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा और एक स्त्री घर में है और एक नाव भी स्त्री हो जाएगी तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा, घर की स्त्री क्या समझाऊंगा, तो अच्छा है आप पांव धुला लीजिए। केवट ने कहा कि अगर नाव पर चढ़ना ही है, आपको नौका विहार करना है, तो आप पांव धुला लीजिए, जैसे आज नौका विहार, तो केवट भगवान को नौका विहार कराएगा। कहा कि आपको मैं बोट में तभी बिठाऊंगा जब पांव धुला लेंगे, नहीं तो यहाँ से थोड़ी दूर जाइए, वहाँ आप पैसे पार हो सकते हैं बिना नाव के, घाट तो थोड़ी की दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो जो, अगर कहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा दूरी पर एक घाट है जहाँ बिना नाव के ही पार हो सकते हैं, कमर भर पानी है, कटिलो जल था दिखाई हो जो, नाव पर चढ़ना है तो पांव धुलाना होगा आपको। तो भगवान कहे कि ठीक है पांव धो लो भाई, मैं क्या है, राम रजा सुके मठ पावा, आ पानी कठौता भरी ले आवा, राम का आदेश पा करके राम रजा यश के मटपा, आज्ञा पा करके कठवत में पानी लाया। टीकाकार लोग कहते हैं कठवत में क्यों पानी लाया, सोने के चांदी के ये तो कोई धातु के बर्तन में ले आता है, कठवत में पानी लाया कि परीक्षण करने के लिए कि अगर काठ का ये बर्तन अगर कहीं नारी हो जाएगी तो नाव में नहीं बिठाऊंगा, भाव की अभिव्यंजना है। काठ के बर्तन में पानी लेकर के पांव धोने के लिए चला कि अगर इसमें कुछ अंतर होगा कुछ परिवर्तन होगा तो नाव पर नहीं बैठाऊंगा, नाव पर तो बैठाना ही है, ये भाव अलग अलग करते हैं लोग। तो पानी काठ के बर्तन में पानी लेकर के भगवान के चरणों को खूब अच्छी तरह से धो रहा है, केवट का कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के चरण कमलों को धो रहा है, जिन चरणों से गंगा आकर के त्रिभुवन पावनी है, तीनों लोगों के पाप को मिटाती हैं, दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत, उन्हीं चरण कमलों को जो सारे तीर्थ भगवान के चरणों से आश्रित हैं, उन्हीं चरण कमलों को केवट खूब धो रहा है, बार बार स्पर्श कर रहा है और चरणोदक को पान कर रहा है, केवट का बड़ा सौभाग्य है। फिर नाव पर केवट ले जाता है, जैसे अब बोट फेस्टिवल मनाएंगे तो केवट नाव पर राम लक्ष्मण जानकी को खूब विहार कर रहा है, साथ में निषाद राज भी हैं, घुमा रहा है, भगवान राम कह के अब चलो देर मत करो पार उतारो, केवट कहता है प्रभु थोड़ा और विहार कर लीजिए, जल विहार नौका विहार, फिर पार उतार देता है। उत्तरी ठाड़ में सुरसरी रहता श्री राम गुह लखन समेता, सुरसरी के दूसरे तट पर बालुका में तट पर उतार दिया, उत्तरी ठाड़ में सुरसरी रहता श्री राम गुह लखन समेता, सीताराम जानकी और निषाद राज को बालू पर खड़ा कर दिया। अब निवेदन करने लगा, प्रणाम करने लगा कि प्रभु आपने मुझे सेवा का अवसर दिया है, मुझे आपने कृतार्थ कर दिया है, पुनः फिर मुझे सेवा का अवसर दीजिए, मैं आपका किंकर हूं, मैं आपका तुक्ष दास हूं, मुझे आप अपना बना लीजिए, जैसे आपने मुझे सेवा दिया है वैसे बार बार मुझे सेवा देते रहिए। भगवान राम सोच रहे थे कि इसको कुछ क्यों मजदूरी देना चाहिए, तो जानकी की ओर देख रहे थे, तो जानकी भगवान के मनोभाव को समझ करके अपना मुद्रिका दिया कि ये केवट को ये मजदूरी दे दीजिए। तो भगवान राम कहे कि ये अपना मजदूरी ले लो, केवट ने कहा क्या मजदूरी लेना है, अरे मैं आपको इस घाट से पार उतारा है और जो भवसागर के पार मैं आऊंगा तब मुझे पार उतार दीजिएगा, मैं यहाँ का माझी हूँ, भवसागर के माझी है, अदला बदली हो जाएगी, मैं तो आपको गंगा पार उतारा है, आप मुझे भवसागर जन्म मृत्यु के सागर से पार उतार दीजिए। तो भगवान राम कहे कि ये विदाई ले लो, अरे खेवाई ले लो, केवट कहा कि नहीं प्रभु, जब देना ही है तो आप जब 14 वर्ष वनवास व्यतीत करके आएंगे तब मुझे जो भी देंगे आशीर्वाद के रूप में ले लूंगा। वहां से भगवान आगे बढ़ते हैं, फिर चित्रकूट में जाते हैं, चित्रकूट में कामतगिरी पर भगवान 12 वर्ष निवास की, बहुत मनोरम पहाड़ी है कामतगिरी की, जहाँ मंदाकिनी है, जहाँ गुप्त गोदावरी है, जहाँ सती अनुसुईया का तपस्थली है, चित्रकूट बहुत रमणीक जगह है। भगवान वहां बहुत समय 12 वर्ष रहे ना चित्रकूट में, आए 11 के आसपास महाराज बोल रहे हैं। चित्रकूट बहुत सुंदर जगह है, अब जो लोग गए होंगे बहुत सुंदर लगता है, अद्भुत जगह है, अनेक चीज देखने के लिए है। जैसे हनुमान धारा है, सीता रसोई है, गुप्त गोदावरी है, मंदाकिनी है, कामदगिरी की परिक्रमा है, चित्रकूट घाट है जहां भगवान श्री राम दर्शन दिए थे तुलसीदास को, बहुत पावन भूमि है चित्रकूट। वहां के बाद भगवान फिर दक्षिण भारत की ओर इधर आते हैं, आते आते इधर पंचवटी में आते हैं। पंचवटी में भगवान राम निवास किए, जहां सुपनखा का नाक काटे। सुपनखा रावण की बहनी, रावण की बहन थी। सुपनखा जिसका नख जो है सुप जैसा हो। महाराज कह रहे थे कि सुपनखा पंचवटी में जब आई तो राम को देख करके विकल हो गई, राम के सौंदर्य को देख करके विकल हो गई, कई प्रस्ताव रख दी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। विधाचा ने बहुत सुंदर संजोग रखा है कि तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं और मेरे जैसे सुंदर कोई नारी नहीं, तो विवाह कर लेना चाहिए। भगवान कहे कि मेरा विवाह हो गया है, मेरा भाई है, उससे विवाह कर लो। भगवान ने झूठ बोला, क्योंकि सुपनखा ने झूठ बोला। सुपनखा का बहुत विवाह हुआ था, डाइवर्स हुआ था, कई विवाह हुआ था और डाइवर्स भी हुआ था। विवाह करती थी तलाक दे देती थी, तो झूठ बोली कि मैं अभी तक कुमारी हूं। इसलिए भगवान भी झूठ बोले कि मैं तो, मेरा भाई है अभी कुंवारा है, जाओ उसे प्रस्ताव करो। तो लक्ष्मण जी कहे कि तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो, हमारे बड़े भाई हैं, राजा हैं, उनसे शादी करो। मुझसे शादी करके दासी बन जाओगी, उनसे शादी करोगी तो रानी बनोगी अयोध्या की। तो वही देखी कि बीच में जो स्त्री है यही बाधा है, इसको इसका काम तमाम कर दूंगी तो मेरी शादी हो जाएगी। तो सीता को जैसे ही मारने के लिए चेष्टा की, भगवान के इशारे से लक्ष्मण जी उसका नाक कान काट दिए। नाक कान बिन भय विकराला, अपने स्वरूप में आ गई, विकराल राक्षसी रूप में आ गई। बहुत मायाविनी थी, इच्छा से अलग अलग रूप बना लेती थी वो, तो अपने स्वरूप में आ गई। नाक कान लक्ष्मण जी काट दिए, भगवान राम नाक कान काट करके संकेत दिए कि और फिर किसी को ये प्रस्ताव नहीं करेगी। या भगवान ने ये कहा कि ठीक है, अभी तुम्हारा नाक कान काट कर छोड़ देता हूं, तुमको और कोई पुरुष वरण नहीं करेगा, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार में तुम्हें वरण कर लूंगा। तुम्हारी इच्छा है तो इस अवतार में मैं एक स्त्री का व्रत लिया हूं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान के पास जो जिस भाव से जाता है भगवान उसके भावना का आदर करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम तो मर्यादा में थे, एक स्त्री एक पत्नी का व्रत लिए थे, तो कैसे विवाह कर लें। तो अभी तुम्हारा नाक कान काट कर छोड़ देता हूं, तुमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन कृष्ण अवतार में मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। जैसे कोई देवी का बकरा होता है तो पूजा के समय उसका कान काट दिया जाता है, तो लोग बोलते हैं अरे देवी का बकरा है, इसको मत करो। गांव में देखा जाता है कि कोई देवी का बकरा होता है तो कोई उसको नहीं मारता है, उसका कान कटा तो समझ जाते हैं देवी का बकरा है। तो भगवान राम ने उसको स्वीकार कर लिया, तुम्हारा नाक कान काट दिया हूं। अब कृष्ण लीला में तुम्हें अपना लूंगा। नाक कान कट गया तो भागी खरदूषण के पास। खरदूषण और त्रिशिरा महान राक्षस थे, उनका यही क्षेत्र था जिससे खार घर है, वो खर घर था, खरदूषण का वो सब एरिया है। ये सब ये पंचवटी जो है खार घर है या खार रोड है, सब खरदूषण का क्षेत्र था, इधर रहता था वो। जिससे खार घर है ना, लोग बोलते हैं ये पंचवटी का क्षेत्र जो है, ये सब पंचवटी के क्षेत्र में ही आता है मुंबई। इधर खरदूषण रहते थे, खर दूषण और त्रिशिरा, खर और दूषण। खर माने गदहा और दूषण माने जो वातावरण को दूषित कर दे, वो खर दूषण है। त्रिशिरा महाराज के जिसका तीन सिर वाला त्रिशिरा, जिसका तीन सिर था, आगे पीछे हर तरह देखता था, तीन सिर था, आगे भी चलता था, पीछे भी चलता था, हर बाएं दाएं हर चलता था। कोई किधर से भी आए वो देख लेता था त्रिशिरा। खर और दूषण जहां जाते थे वातावरण को बिल्कुल दूषित कर देते थे। तो मुंबई में भी बड़े बड़े जो उद्योगपति लोग हैं, बड़े बड़े जो कल कारखाने हैं, वातावरण को दूषित कर दिए हैं। मुंबई जो महानगर है, यहाँ का वातावरण सबसे ज्यादा दूषित है। बड़ी बड़ी जो पाइपलाइनें हैं गटर की, वो समुद्र के में जाकर पानी को दूषित करती। बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं, मोटर कारें हैं, सब वातावरण को दूषित कर रही हैं। तो आज भी खरदूषण का प्रभाव है। तो पंचवटी में विशाल सेना लेकर जब सुपनखा गई कि मेरा तुम्हारे रहते हमारी यह दशा हो गई, नाक कट गई। नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा चली गई। तो खरदूषण भारी सेना लेकर राम पर अटैक किया, खेल खेल में भगवान उसकी मायावी सेना को भी मार दिए, उसकी सारी सेना को भी मार दिए। उसके पहले ही सीता को भगवान ने कहा कि अग्नि में निवास कर जाओ, असली सीता अग्नि में निवास कर, और माया सीता को रावण ले जाता है। जब इस तरह से खर दूषण और त्रिशिरा का जब वध हो गया तो सुपनखा वहीं तक नहीं रही, फिर रावण के पास गई और कही कि तुम को पता नहीं है तुम्हारे साम्राज्य में जो तपस्वी आ गए उनके साथ बहुत सुंदर नारी है, अब ये लोग इतना ये किए कि हमारा नाक कान काट दिए और खरदूषण का भी वध कर दिए, तुम क्या कर रहे हो, हमारी ये दशा हो गई। तो रावण अनुमान करने लगे खरदूषण तो महान बलशाली थे, हमारे समान ही, उनको भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता है। खरदूषण सम बलवंता, रावण अनुमान करने लगा कि खरदूषण तो बलवान थे हमारे जैसे, उनको भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता, लगता है पृथ्वी का भार, पृथ्वी पर भगवान का अवतार हो चुका है। रावण ने कहा कि ठीक है, अगर भगवान होंगे तो उनके हाथों मर करके मुक्ति लाभ करूंगा, और कोई तपस्वी होंगे तो उनको बंदी बना करके उनकी स्त्री को ले आऊंगा। रावण सोचा कि देखते हैं, अगर भगवान होंगे तो मैं आसुरी वृत्ति से मुक्त हो जाऊंगा, उनके हाथों मर करके इस राक्षसी वृत्ति से मुक्त हो जाऊंगा। रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत उत्तम कुल में जन्म लिया था, ज्योतिष शास्त्र का सब शास्त्र में बड़ा पारंगत था वो, खगोलीय भगोलीय सब गणना करता था और अन्य ग्रहों पर भी जाता था, ग्रहों की या भौगोलिक स्थिति के बारे में उसको बहुत सुंदर ज्ञान था। इसलिए कहा जाता कि रावण जो है एक स्काई ब्रिज बनाना चाहता था, हेवन ऑन द अर्थ, जैसे पृथ्वी का स्वर्ग है वैसे पृथ्वी से और स्वर्ग से एक स्काई ब्रिज बनाना चाहता था। यहां से पृथ्वी से स्वर्ग तक एक ब्रिज बना करके आवागमन की, सामान्य लोगों के लिए भी यातायात की सुविधा बनाना चाहता था कि हर आदमी आराम से स्वर्ग आ जा सकता है। ब्रिज से आसानी से जा सकता है। जैसे आजकल लोग चंद्रमा पर जाने के लिए, अन्य ग्रहों पर जाने के लिए खोज कर रहे हैं, तो रावण भी एक खोज किया था, अनुसंधान किया था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था रावण। तो रावण को इस तरह से एक दिन मारीच के पास गया विमान से, लंका से, और मारीच से कहा कि देखो इस जंगल में दो तपस्विया, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, तुमको सोने का मृग बनना है और उनकी स्त्री को मुझे हरण करना है। ऐसा सोने का मृग बनो कि वो लोग तुम्हारे ऊपर लुब्ध हो जाएंगे, लुब्ध होकर उनको दूर ले जाना और इसी बीच में मैं सीता को हरण कर लूंगा। मरीच ने कहा कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनसे बैर मत करो, उनके प्रभाव को मैं जानता हूं। बक्सर में विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में आए थे, वहां खेल खेल में एक तिनका से मारे मैं यहां गिर गया हूं, बक्सर से यहां पंचवटी में, तो इनसे मत करो, बहुत समर्थ है और स्वयं भगवान है, इनसे राग मत, द्वेष मत करो। रावण ने कहा कि गुरु की तरह उपदेश मत करो, जो मैं कहता हूं करो तो अभी तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा। मामा के पास गए, लेकिन मामा कहा कि तुम जो मैं कहता हूं वो करो, नहीं तो गुरु जैसा तुम्हें उपदेश हम नहीं लेने आए हैं, तुम्हें जो कहता हूं आदेश का पालन करो। तो मारीच ने सोचा कि ये तो इसके हाथ, अगर नहीं जाता हूं तो इसके हाथ मरना है और उधर भी मरना है, उभय भांति देखा निज मरना, अपनी मृत्यु दोनों तरफ निश्चित देख करके विचार किया कि राम के हाथों मरना अच्छा है, इसके हाथे मरकर नरक में जाना है, अब प्रभु राम के हाथ मरूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब विचार किया, तो विचार करके तैयार हो गया, तो सोने का मृग बना, माया से सोने का मृग बना, और वह देखकर सीता जी लुब्ध हो गई, कहीं कि ये मृग बहुत सुंदर है, इसको ले आइए। तो माया सीता थी, इसलिए माया मृग पर लुब्ध हो गई, असली सीता तो अग्नि में चली गई थी, माया सीता माया मृग पर लुब्ध हो गई। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने का मृग कहां जन्म लेता, असंभव है, लेकिन तथापि रामो लुलुभे मृग, इसके बावजूद भी राम उस पर लुब्ध हो गए, राम भी मोहित हो गए। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुब्धे मृगाय, मृग के ऊपर लुब्ध हो गए, कि भगवान भी माया जनित, जैसे माया से विमोहित जीव जैसे कार्य करता है, वैसे भगवान भी माया जनित बद्ध जीव जैसा कार्य करना चाह रहे थे, माया बद्ध जीवों का क्रियाकलाप प्रस्तुत करना चाहते थे, इसलिए मायापति माया मृग के पीछे भाग रहे थे। जो माया के पति हैं वो माया मृग के पीछे भाग रहे हैं जो सर्वज्ञ हैं वज्ञ की तरह अपने को प्रस्तुत कर रहे थे, वो जानते थे कि ये मृग नहीं है, असुर है, भाग रहे थे। अंततः मृग को कबद्ध किए तो मारीच असुरी रूप में प्रकट हो गया, उधर रावण जो है सीता को ले गया, रावण को सीता में, सीता को विमान से ले गया लंका में। आदव राम तपो बना दिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदे ही हरणम, सीता को हरण कर लिया। फिर आगे सीता को ले जाए तो बीच में जटायु देखे कि एक स्त्री बिलाप करके जा रही है, तो समझ गए कि ये जगत जननी सीता जी हैं। तो जटायु बड़े योद्धा थे, वो विमान पर अटैक किए और रोक दिए, बोले कि सीता कहाँ ले जा रहे हो, रावण के साथ युद्ध किए जटायु, और युद्ध में उसको मूर्छित कर दिए। बाद में मूर्छा फिर हटी तो अग्नि बाण से जटायु का पंख काट दिया। पंख के बिना ये हो गए जटायु मरणम, वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। तो जटायु जी इस तरह से सीता के लिए युद्ध किए और सीता राम के कार्य में अपना शरीर त्याग कर दिए थे। भगवान राम बाद में सीता का अन्वेषण करते करते जटायु से मिले तो उनको देख करके जटायु से संवाद हुआ, मरे नहीं थे अभी। भगवान कहे कि तुम मेरे कार्य के लिए अपने शरीर को करने उछावर किया है तो तुम्हें कहो तो मैं अचल कर देता हूँ। जटायु ने कहा कि नहीं नहीं, जब आप के सामने मैं शरीर छोड़ूंगा तो हमारा सौभाग्य होगा। तो भगवान के गोद में जटायु का प्राणांत हुआ, शरीर छोड़े। फिर स्वयं भगवान जटायु का दाह संस्कार किए, क्योंकि भगवान के कार्य के लिए उन्होंने शरीर त्यागा। तो वहां से आगे बढ़ते हैं, जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। फिर सुग्रीव जी से मित्रता होती है, उसके पहले शबरी से के आश्रम पर जाते हैं जहां नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। शबरी भी एक महान भक्त थी जो बाल्यावस्था से ही मुनि पतंग के आश्रम में रहती थी। शबरी जो है एक दिन अपने पिता के घर में देखी कि बहुत सारे मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी सुअर लाए गए थे, तो शबरी ने कहा कि माँ ये सब बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी भेड़ भेड़ी कबूतर ये वन्य प्राणी लाए गए हैं किस लिए? तो माँ ने कहा कि तुम्हारा विवाह होने वाला है, मेहमान आएंगे तो बकरों को जानवरों को काटकर मांस उनको दिया जाएगा। पहले बाल्यावस्था में शादी हो जाता था। तो शबरी का हृदय द्रवित हो गया, कही कि ये विवाह में सारे पशु मारे जाएंगे, तो बहुत दुखी हो गई। रात्रि में सब सो गए तो घर छोड़कर भाग गई कि न विवाह होगा न पशु मारे जाएंगे। भागते भागते जंगल के रास्ते से भागते भागते उसके पांव में बहुत कांटे और फोड़े पड़ गए थे। बहुत सुदूर जंगल में बहुत दूर चली गई रात भागते भागते। सुबह में मतंग मुनि के आश्रम पर शौरी बाल्यावस्था में गई। मतंग मुनि देखे कि ये कोई विलक्षण बालिका आई है, बुलवाए अपने सेवक से। उसके विलक्षणता को समझ गए कि इसे भगवान राम का दर्शन प्राप्त होगा, कोई सामान्य बालिका नहीं है। कहे कि आज से तुम इस आश्रम पर ही रहो, सेवा करो, भगवान राम का ही तुम्हें दर्शन प्राप्त होगा। शबरी को दीक्षा दे दिए मतंग मुनि। वहीं शबरी रहने लगी, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक भगवान राम की सेवा करती थी। प्रतिदिन उनके लिए जंगल से कंदमूल फल लाती थी, पुष्प से मार्ग को सजाती थी, प्रतिदिन अनवरत भजन करती थी, फिर प्रभात में उसको विसर्जित कर देती थी, फिर नए पुष्प फल चुनकर लाती थी। से बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक भगवान का सेवा एकनिष्ठ मन से की, या नहीं सोची कि अब कहां भगवान आएंगे। गुरु के बात में उसको बहुत अटूट विश्वास था कि गुरु मतंग मुनि कहें तो जरूर भगवान आएंगे। इतना लंबा सफर वृद्धावस्था तक सेवा करती रही। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजिगान। और हमेशा भगवान का गुणगान करती थी। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु मतंग मुनि के चरण कमलों में भी सेवा करती थी, फिर राम के चरण कमलों में सेवा करती थी, उनका भजन करती थी खूब। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजिगान। और साधु संगति करती थी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। साधु संग में भगवान के कथा कीर्तन में आनंद लेती थी, इसमें रमती थी। कैसे है रमन, कैसे दो भक्त मिलते हैं तापस में, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो साधु संघ में वही भगवान के गुणानुवाद करती थी, कथन करती थी, श्रवण करती थी, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो एक दिन भगवान श्री राम आए शबरी के आश्रम में, कहे कि तुम्हारी भक्ति नौविधा भक्ति है। दो भक्त हुए जो नौविधा भक्ति के आचार्य हैं, शबरी और अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज में भी नौविधा भक्ति थी। भगवान राम कहे शबरी से कि तुम्हारी भक्ति जो है नौ प्रकार से दृढ़ है। एक मह जिनको, नौ मह एको जिनके होई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सब प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तुम्हारी भक्ति तो सब प्रकार से नौ विधा भक्ति है। शौरी में नौ प्रकार की भक्ति थी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, नौ विधा भक्ति थी। नौविधा भक्ति का भगवान वर्णन किए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, सब वर्णन किए। सत सरल सब छल छल ही नामम भरोसी हर्ष न दीना, सतही सब महिमय जग देखे मोहिते अधिक संत करी लेखे, अठही यथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखे पर दोष। नौविधा भक्ति का बखान करके शौरी के भक्ति को पूर्ण किए भगवान। फिर वहां से आगे सुग्रीव जी से, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता किए और उनको संकल्प करके दिखाए कि मैं अवश्य आपका खोया हुआ साम्राज्य और पत्नी वापस दिलाऊंगा। फिर बाली निर्दलनम, फिर बाली का वध किए, सुग्रीव को राजा बनाए। फिर समुद्र तरणम, फिर समुद्र के ऊपर पुल निर्माण किए, समुद्र को देख दिए भगवान। तीन दिन तक समुद्र से रास्ता मांग रहे थे कि मार्ग दे दो, हम सेना लेकर लंका पार जाना चाहते हैं, लेकिन समुद्र नहीं सुना। तो भगवान थोड़ा क्रोध से देखे तो समुद्र में उबाल आ गया। समुद्र कहा कि प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हमारी मर्यादा है कि समुद्र कभी सूखता नहीं है। तब मर्यादा होकर हमारी मर्यादा का ध्यान रखिए। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारी मर्यादा ही नहीं रखेंगे, हमारी मर्यादा समाप्त कर देंगे, तो आपकी मर्यादा कैसी? समुद्र की मर्यादा है ना कि वो कभी सूखता नहीं है। समुद्र भी सूखने लगे तो फिर समुद्र में और छोटे ताल तलैया में क्या अंतर रह जाएगा? तो कहा अभी मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप मेरे ऊपर एक विशाल पुल का निर्माण कीजिए। तब भगवान ने चार दिन में चार योजन पुल का निर्माण किए हैं, 400 कोस का, 100 योजन का पुल। 100 योजन इतना बड़ा पुल आज तक कोई नहीं बांधा है, न भूतो न भविष्यति, न कोई बांधा है न कोई बांध सकता है। इसलिए भगवान अद्भुत कर्मा है, भगवान का कोई नकल नहीं कर सकता है। ऐसा ब्रिज जो है समुद्र के ऊपर कोई बांध ही नहीं सकता है। 5 किलोमीटर ब्रिज बांधने में कई साल लग जाते हैं। आ भगवान 400 कोस का ब्रिज जो है 4 दिन में बांध दिए, और वही बंदर भालू की सहायता से। न कोई क्रेन था, न कोई टेक्नोलॉजी था, न कोई बड़ा बड़ा कोई मशीन था, ऐसे बांध दिए। नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार। नल नील जाति के वैसे शिल्पकार थे ये लोग, पुल का निर्माण कर दिए, विशाल पुल। ऐसा ये भगवान का एक कार्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। ऐसा कोई कर सकता है? आज तक कोई सोच भी नहीं सकता है कि इतना पुल भी होता है जो भगवान किए हैं। हमारे दिमाग से बाहर की बात है। फिर समुद्र पार करके लंका में गए, समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम, हनुमान जी लंका दहन कर दे। पश्चात रावण कुंभकर्ण हनना ये तद्धि रामायणम, इतना ही रामायण है संक्षिप्त। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब प्रश्न करने के लिए समय नहीं बचा है, इसलिए प्रश्न जो है कल कर लीजिएगा आप लोग। कल राधारण महाराज क्लास देंगे तो विलंब हो गया ना, 9:30 बज गया है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।